نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے 59 تک سورۃ النمل. اس حصے میں آج کے ہم دو قوموں کا قصہ دیکھیں گے, ثمود کا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا. ثمود کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, قوم کا نام ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی نام نہیں ملتا, بس قوم لوط کہا جاتا ہے, تو وہ تو آسان ہے. مگر باقی عاد کا بھی اور ثمود کا بھی نام آپ کو یاد ہونا چاہیے, اور ان کے طرف جو نبی بھیجے گئے وہ بھی یاد ہونے چاہیے. یہ قصہ بہت پہلے کا تھا, یعنی بنی اسرائیل وغیرہ کے آنے سے بھی بہت پہلے کا قصہ ہے, بہت پرانا قصہ ہے, بلکہ انفیکٹ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کا. اور ان کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے, پتھروں والے, کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو کار کر کر کے ان کے اندر گھر بنایا کرتے تھے, اور اپنی اور چیزیں جتنے بھی کام کے ہوتے تھے, بازار وغیرہ سب ان کے انہی پہاڑوں کے اندر ہی ہوتے تھے. تو بڑی مضبوط قوم تھی, بہت ترقی یافتہ جس کو کہیں گے قوم تھی. آپ ہم ہی سوچتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں, لیکن بڑی بڑی قومیں گزری ہیں پہلے. ایسا نہیں ہے کہ آج کا زمانہ ہی کوئی بہت ایڈوانس زمانہ ہے, وہ بھی بہت ایڈوانس تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ آج اپنی داستانیں کہنے کو موجود نہیں ہیں, لیکن کوئی کم نہیں تھے ترقی میں وہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. ان کے کس چیز کے لیے بھیجا؟ ان اعبد اللہ, کہ اللہ کی عبادت کرو. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ ایک یونیورسل میسج ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے پہنچایا. تو ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا, اس کا مطلب کوئی اور چیزیں پریچ نہیں کرتے تھے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, تو وہ ہو گئے دفعتاً دو فریق باہم جھگڑ رہے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے, کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے, تو آپ دیکھیں ہر ایک سوسائٹی میں دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ ہوتا ہے جو مان لیتا ہے اس کو, اور دوسرا گروہ لازمی انکار کرنے والوں کا ہوتا ہے. انکار کرنے والے بھی پھر وہیں تو نہیں رکتے, اس کے بعد وہ مخالفت پہ جم جاتے ہیں, اور اس طرح اور زیادہ دوریاں دونوں گروہ میں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہمیشہ ایک گروہ تو حق پہ ہوتا ہے, دوسرا اکثر اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں آج یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری سوسائٹی میں, ہماری امت میں جب دو گروہ بنتے ہیں, تو یہ تو اوپن چوائس ہے کہ دو گروہ ہوں گے, اور ہمارے پاس چوائس ہے ہم کس کے ساتھ ملتے. تو ہم کس کے ساتھ ہوتے, جو اللہ کے راستے کی طرف ہو یا جو اس کا مخالف ہو؟ کیونکہ یہاں پہ جیسے بتا دیا گیا نا, اس طرح ہمیشہ ہر دور میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ایک گروہ حق کو مان لیتا ہے, دوسرا گروہ اس پیغام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو ہم کس کی طرف ہیں؟ ایون آج مسلمانوں کے اندر بھی گروہ ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا, اندر بھی گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو دین سے الرجک رہتا ہے ہر وقت, جن کو دین پسند نہیں ہے, جو دین کی باتوں کی مذاق اڑاتے ہیں, ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, بہت کرٹیسزم ہے, بہت اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں, ان کو اس میں بہت کیڑے نظر آتے ہیں. دوسرا وہ گروہ ہے جو دین پہ جمع ہوا, جو دین پہ چلتا ہے. تو پھر کون کس کی طرف ہے؟ بعض دفعہ ایک گھر میں رہتے ہوئے افراد بھی اس طرح دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. کوئی ایک چلنا چاہتا ہے, دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے. تو جب ہم چوائس کرنے لگے نا, تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو دونوں گروہ ہیں ان کو ان کے ظاہری اس کے اوپر نہ جائیے گا کہ ظاہر کسی کا دیکھ کر اور اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں. مثال کے طور پہ اس مثال سے دیکھیں کہ کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور اس نے جبہ پہن لیا, تب آپ کہیں بس یہ ہے دین دار, ایک گروہ یہ ہے اور دوسرا وہ ہے, تو ہم نے تو اس کی طرف نہیں ہونا. اب وہ تکبیر اور اس طرح نعرے لگا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں یہ ہے اللہ والا گروہ, لہٰذا ان کی تو مخالفت نہیں کرنی, یہ تو بہت اچھی ہیں, کیونکہ دیکھو نا انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ان کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں, شلواریں اونچی ہیں, تو ہمیں تو بس ان کا ساتھ چاہیے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے دین کا نام لے کر اور پھر اپنے مقاصد پورے کیے, دین کے نام پہ ہی وہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں, وہ داڑیاں ہی رکھتے ہیں, وہ ایسے حال حلیہ بناتے ہیں, لیکن وہ دین کو ہی نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دین کو اپنے کچھ ایجنڈاز ان کے ہوتے ہیں اس کے لیے یوز کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے دین دنیا میں بے عزت ہوتا ہے. اور آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دین کو سمجھ لیا, ہائی جیک کر لیا, اور وہ اپنے حال حلیے ایسے دکھاتے ہیں کہ ہم سے پکے تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ مسلمان ہیں, ورنہ تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں, ورنہ تو آپ کا خون بھی جائز ہے اور ہر چیز جائز ہے, آپ کو جلانا بھی جائز ہے, آپ کے اوپر کفر کے فتوے ہیں, سب کچھ ہے. تو دیکھنا کیا چاہیے کہ کیا ان کا کیریکٹر بھی اس طرح سے ساتھ دے رہا ہے ان کے حلیوں کی یا نہیں, یہ تو نہیں وہ ان حال حلیوں کو یوز کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے. اسلام نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے, حال حلیے بنا لینے سے اسلامی تو کوئی اسلام تو نہیں ہو جاتا. تو ہم یہ ظاہری صورتوں سے بعض دفعہ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس یہی ہے, یہ دین کا سمبل ہے اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے. سادہ لوگ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کو اس طرح سے ان کے حال حلیوں سے اور اس چیز کو دیکھ کر پھر ان کو نہ کرائٹیریا بنائیں اور ان کو رول ماڈل نہ بنائیں, ان کا جب تک کردار نہ اس کے مطابق ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور آپ سیرت میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا. اس کے بعد آپ بڑی اچھی طرح کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے کیا وہ اس سے ذرا بھی مماثلت رکھتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسی طرح بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو ان لوگوں کو پھر جب دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ او یہ تو دین جو اسلام ہے نا بس وہ تو بربریت کا حکم دیتا ہے, دیکھو قتل و غارت سکھاتا ہے, دیکھو یہ ہیں اسلام والے, اور وہ ان کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ ہیں جو اسلام کے ریپرزینٹیٹو ہیں, حالانکہ وہ نہیں ہیں, اور لیکن یہ ان لوگوں کو دیکھ کے اسلام کے اوپر باتیں بناتے, ان لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں, جی دیکھ لیا اسلام, دیکھا وہ فلاں وہ بھی ہیں, وہ فلاں بھی ہیں, وہ بھی تو ہیں نا مسلمان, دیکھو کیا کر رہے ہیں آج. تو کس نے آپ کو کہا اسلام میں تو, یا ہر ایک جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں کالی بھیڑے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط طریقوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, ان کو تو اس کا ریپرزینٹیٹو نہیں کہا جا سکتا, وہ دین کے نمائندے تو نہیں ہیں, وہ اسلام کے نمائندے تو نہیں ہیں, اور کوئی داڑھی رکھ لے تو وہ اسلام کا نمائندہ نہیں بن جاتا. تو اس دور میں بھی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے, اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہ حق کو ہمیں حق کر کے دکھا اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ حق کو باطل بہت گڑمڈ ہو جاتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں تو دو گروہ تھے, ایک کفر کا اور ایک وہ گروہ تھا جو کہ حق کی طرف, تو ایک گروہ ہمیشہ ہوتا ہے جو حق کی طرف ہوتا ہے, لیکن آج کے وقت میں وہ حق ہی اتنا جس کو کہیں گے ग्रे एरिया में चला गया कि कुछ समझ नहीं आती लोगों को कि किसका साथ दें और किसका नहीं, और वह फिर गलत लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो अपना हमेशा एक ये पैमाना बना लें कि हमने ऐसे ही नहीं किसी के सिर्फ हाल हुलियों को देख के उनके पीछे चल पड़ना, उनकी नाराय तकबीर सुन के उनके पीछे हो जाना और उनका सोच लेना कि ये नमाज पढ़ते हैं तो लिहाजा ये सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खवारिज का एक फितना खड़ा हुआ था, वो भी ऐसे ही थे कि अपने आप को सबसे पक्के और सच्चे मुसलमान कहते थे, बल्कि वो कहते थे हमसे ज्यादा तो कोई मुसलमान है ही नहीं, बाकी सारे काफिर हैं। तो काला या कौमी है, सलाम ने फरमाया ए मेरी कौम लिमा तस्ताजिलूना बिस्सय्यति क़ब्ल अल-हसना, क्यों तुम जल्दी मांग रहे हो बुराई को भलाई से पहले। बुराई कौन सी थी? वो कहने लगे कि अगर आप सच्चे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम तो आपका इनकार कर रहे हैं, फिर ले आए ना हमारे पास अजाब, कहाँ है अजाब। कुरैश मक्का भी तो यही कहते थे ना, सूरह मारिज में शुरू ही होती है इसी से। तो अजाब की जल्दी मांग रहे हैं हसना से पहले। अल हसना क्या है यहाँ पे, भलाई क्या है यहाँ पे, ईमान है भलाई कि बजाय इसके कि तुम थोड़ा गौर फिक्र करो, तुम थोड़ा इस चीज को सोचो कि किस दावत की तरफ हमें बुलाया जा रहा है, क्या हमें पैगाम दिया जा रहा है, तुम उल्टा जल्दी कर रहे हो अजाब में। ईमान को नहीं देख रहे कि ये ईमान है, ये क्या चीज है, हम इसको समझें, उल्टा तुम ये मांग रहे हो अजाब, भलाई छोड़ के बुराई की तरफ जा रहे हो। लौला तस्तगफिरून अल्लाह, क्यों नहीं तुम अल्लाह से इस्तगफार करते, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ, क्यों नहीं अल्लाह से बख्शिश मांगते। अब देखिये जो इस्तगफार है ना, यहां पे हमें पता चलता है कि इस्तगफार का फायदा ये है, जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर रहम होता है। और इस्तगफार क्या चीज होती है कि इंसान वाकई अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हो, निदामत हो, उसको ये पता हो कि मैंने क्या किया है और जो मैंने किया है वो गलत किया है। ऐसा इस्तगफार नहीं होती ये कि इंसान बस तस्बीहां जपता रहे और आज मैंने इतने टाइम्स इस्तगफार कर ली, इतने टाइम्स कर ली, नहीं। इंसान निदामत भी हो, शर्मिंदगी भी हो और अपने गुनाह का इकरार भी हो। ऐसा भी नहीं है कि इंसान ये कहे ऐसे किया तो हमने कुछ नहीं, लेकिन हम इस्तगफार मांग लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज है, सुना है कि उससे बड़े मसले हल हो जाते हैं तो हम इस्तगफार मांग लेते हैं, लेकिन वैसे हमने किया तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया। बस लोग पूछते हमने क्या किया ऐसा, यानी उनको ये शऊर ही नहीं, जब आप समझते ही नहीं आपने कोई गलत किया तो फिर किस चीज की इस्तगफार। और वाकई जो फासिक होता है ना, उसको अपने गुनाह कुछ भी नहीं लगते, उसको ऐसे लगता जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी ऐसे उड़ा दे बस। जो मोमिन होता है, हालांकि वो मोमिन है, उसको लगेगा कि जैसे मैं पहाड़ के नीचे बैठा हूं, पहाड़ मेरे ऊपर लुढ़क आएगा। वो गुनाह करता है, उसको गुनाह चीज ही कुछ नहीं लगते, ऐसे लाइट लगते हैं कि उड़ा दी मक्खी नाक से। और दूसरा देखो कैसे यानी इतना हर वक्त खौफजदा रहता है कि मेरे ऊपर ये गिर ना जाए, यानी उसको इतने बोझल लगते हैं वो गुनाह। हम किन में से हैं? क्या हमें अपने गुनाह कभी दिखाई भी देते हैं, या कभी गुनाहों का एहसास भी होता है? हमसे कोई गुनाह हो गए, हम माफी मांग रहे हैं तो किसी गुनाह की माफी मांग रहे हैं ना, तो ये एहसास ना अंदर कहीं छुपा होता है कि वैसे मैंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन चलो मैं कह देती हूं ये दिन है इस्तगफार करने की, चलो मैं मांग लेती हूँ इस्तगफार, ये कोई इस्तगफार नहीं है। तो सबसे पहली चीज इसमें निदामत है, उसके बाद इकरार करना है अपने गुनाह का, और उसके बाद ये चीज है कि इंसान ये अपने अंदर अहद करे कि अब मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि इंसान फित ये जो बशरी तकाजा होता है, इंसान इंसान ही तो है ना, तो कमजोरी है इंसान के अंदर, भूल भी इंसान के साथ लगी हुई है, वो गुनाह दोबारा हो जाता है वो अलग बात है। कम से कम उस टाइम पे शऊर के साथ तो बस इस्तगफार करे कि मैं अब नहीं करूंगी। तो जो इंसान तौबा करता है, यहां पे हमें पता चला उसके ऊपर रहम होता है, और क्या मिलता है उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की ये रिवायत है, जो शख्स इस्तिग़फार में लगा रहे अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने के रास्ते पैदा फरमाएंगे और हर तंगी को कुशादगी में बदल देंगे और ऐसी जगह से उसको रिस्क देंगे जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। तो क्या क्या मिलेगा, हर दुश्वारी से निकलने के लिए रास्ता अल्लाह ताला निकाल दे। जो भी आपकी कोई मुश्किल है ना, आप इस्तग़फार शुरू कर दें, उस मुश्किल से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला कोई ना कोई बनाएगा। तंगी है कोई, उसमें कुशादगी है, रिस्क की तंगी है और कोई तंगियां जिंदगी के अंदर, कुशादगी मिलेगी। और इसी तरह कोई और ऐसा कोई प्रॉब्लम है रिस्क रोजी का, अल्लाह ताला वहां से अता करेगा जहां से इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होगा। इस्तग़फार की बरकतें हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को नसीहत फरमाई थी तो सूरह नूह में आता है, उन्होंने फरमाया था अपने परवरदिगार से मगफिरत मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुमसे तुम पे आसमान से बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा, तुम्हारी खातिर नहरें चलाएगा। यानी उन्होंने इसके फवायद क्या बयान फरमाए, आसमान से बारिशें, माल में इजाफा, औलाद मिलेगी, बाग और नहरें जारी फरमाएगा अल्लाह ताला। ये चार फायदे हैं जो कुरान में आए, जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। तो जिसको माल चाहिए वो भी यही करे, जिसको मुश्किलात से बचना है वो भी इस्तग़फार शुरू कर दे, जिसको औलाद चाहिए वो बजाय पीरों फकीरों के वजीफों तवीज़ों के वो जो है ना इस पे अमल करे कि इस्तग़फार करे। तो इस्तग़फार से बहुत कुछ इंसान के काम बन जाते हैं। और इस्तग़फार के अल्फाज क्या है, वैसे तो इंसान अपने भी अल्फाज कोई यानी निदामत के जो भी उसको समझ में आते हैं बोले अल्लाह ताला के सामने, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत में हमें मिलते हैं, 100 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कहा करते थे एक दिन में और एक मजलिस में, ये भी आता है एक मजलिस में, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नक अंता तव्वाबुर रहीम, ए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। तो इन अल्फाज को हम याद कर लें, इससे हमारी देखें मग़फ़िरत भी होती जाएगी, हमारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे और हमें दुनियावी भी कितनी सारी मुश्किलात हैं जो हमारी हल हो सकती है। कौन नहीं है मुश्किल में आज, हर एक को कोई ना कोई मुश्किल है। तो इस्तग़फार की यानी एक ये नहीं मैं कहूँगी कि आप तस्बीह पकड़ के ज़रूरी आप बैठें और फिर करें, चलते फिरते हर वक्त में इस्तग़फार को अपना वजीफा बना लें। कोई उसका हिसाब नहीं है कि इतने ही टाइम्स करना है, जितना हो सके जितना हो सके। और भी अल्फाज हैं, अगर आपको ये नहीं आते तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैही, ये भी बड़ी मतलब अच्छे अल्फाज हैं इस्तग़फार करने के लिए, अस्तग़फिरुल्लाह भी कह सकते हैं। तो ये सारे अल्फाज आसान हैं, आप अगर ट्राई करना शुरू कर दें अपनी ज़ुबान पे जारी रखें तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाएगी। और इंशाल्लाह ताला जब आदत बन जाएगी तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी एक इनमें से ले लें दुआ, अब अल्लाहुम्मा नकाफून तुहिब्बुल अफवा फ़ाफून ना, यही ले लें। सारा साल ही हमें ये करनी है, हर वक्त ही हमें चाहिए, क्या हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए बख्शिश, रमज़ान के रमज़ान चाहिए और वो भी आखिरी अशरे में सिर्फ नहीं, हमें तो सारा वक्त ही चाहिए अल्लाह, सारा वक्त ही हम चाहते हैं तुम्हारे गुनाहों को मिटाता जाए। तो इसलिए ये नुस्खा बड़ा ही कारामद है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की ये रिवायत है, सजदे में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे सारे के सारे, दिक्कहू व जिल्लहू छोटे भी और बड़े भी, व अव्वलहू व आखिरहू और अगले भी और पिछले भी, व अलानियतहू व सिर्रहू और ज़ाहिर भी और पोशीदा भी। इसमें सारे गुनाह आ गए ना फिर, छोटे बड़े अगले पिछले सारे, आगे जो करने वाली अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, अल्लाह जो पीछे कर चुके वो भी माफ़ कर दे, कुछ जाहिरी किए और कुछ छुप छुप के किए उनको भी माफ़ कर दे, सारों को ही माफ़ कर दे। ये सजदे की दुआ है, ये कितनी प्यारी दुआ है ना। तो अगर हम सजदों में अपने ये दुआ करना शुरू कर दें सजदे की तस्बीह के बाद, तो उसे फायदा ये होगा कि हर नमाज में कितनी ही दफा हम इस्तग़फार कर लेंगे। ठीक है, तो इस्तग़फार के जो फवायद हैं उनमें से एक ये भी फायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसकी बुक ऑफ डीड्स, जो उसका आमाल नामा है, उसको खुश कर दे क़यामत के दिन, यानी वो अपना आमाल नामा देख के हैप्पी हो जाए, तो वो क्या करे, इस्तग़फार की कसरत, बहुत ज्यादा इस्तग़फार करे, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे अपना आमाल नामा देख के। इसकी बड़ी बरकतें इस्तग़फार की। तो उन्होंने क्या फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम ने कि तुम इस्तग़फार क्यों नहीं करते, तो इस्तग़फार कर लो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। हम में से कौन है जिसको अल्लाह का रहम नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए हम भी इस्तग़फार करें, और इससे इंसान अजाब से भी बच जाता है। कुरान में है कि या नबी जब तक आप इनके अंदर हैं और जब तक ये इस्तग़फार करते रहते हैं तो इनके ऊपर अजाब नहीं आएगा। तो आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से उठ गए, ये एक चीज थी जो कि यानी रुकावट थी अजाब के आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रहे, अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है जिससे हम अजाब को रोक सकते हैं, और वो है इस्तग़फार। अच्छा, फिर उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया बजाय इसके कि इस्तग़फार करें, कालु तय्यरना, उन्होंने कहा हम बुरा शगुन लेते हैं, किससे, बिका व बिमम्मा का, तेरे से भी और जो तेरे साथी हैं, जो तेरे पर ईमान लाने वाले हैं, हम तो बुरा शकून लेते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ना मनहूस समझते हैं हम, यानी अल्लाह के नबी हैं और उनके बारे में कह रहे हैं हम तुझे मनहूस समझते हैं। असल में इनके यहाँ पे तो कुछ कहत साली सी आ गई थी, तो कहने लगे ये तुम लोगों की नहूसत है, तुम लोगों की वजह से ये हमारे मसले पड़ गए कि जो तुम हर वक्त हमें ये कहते रहते हो और ये करते हो। तो ये बदशगुनी उन्होंने ली सालेह अलैहिस्सलाम से और उनके साथियों से। काला तायरुकुम इंदल्लाह, उन्होंने फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा शकून अल्लाह के पास है, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम एक कौम हो जो आजमाए जा रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं पहले शगुन लेने के बारे में, क्या हम शगुन ले सकते हैं इस तरह के हम किसी को कहें कि फलाना मनहूस है, ये दिन मनहूस है, सफर का महीना मनहूस है, इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, तेरा तारीख मनहूस है, और फलाने तेरी शक्ल मनहूस है, तेरी शक्ल सुबह देख लूं तो मेरे काम खराब हो जाते हैं, और क्या नाम है उसका, मंगल का दिन मनहूस है, वो बुध हर काम शुद्ध, बुध के दिन काम करो मंगल के दिन ना काम करो। आपने किया था ना मंगल के दिन, जब भी आपका काम खराब हो गया, आपने तारीख ही ऐसी रखी थी तभी ये शादी नहीं चली। तो ये सब बातें शिर्क तक लेके जाती हैं, शिर्क तक। इसलिए कि हम क्या कह रहे हैं असल में कि इनके अंदर ताकत है, इस तारीख में ताकत है, इस महीने में ताकत है, काली बिल्ली में ताकत है, फलां दिन में ताकत है कि वो भी किसी के काम को संवार सके या बिगाड़ सके, जबकि हम जानते हैं कि अन्नाफे और अद्दार अल्लाह की सिफात है, वो ही खैर और शर उसकी तरफ से ही आता है। इब्ने हजर तो यहां तक फरमाते हैं कि बदशगुनी की वजह से सफर को तर्क कर देना कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। कभी जो सोचा इस बात का, ओ नहीं जी वो जो अच्छा पता चला, अब मैं ना दो दफा निकली हूं तो आगे मैंने ये देख लिया तो ऐसे हो गया, तो चलो या काली बिल्ली वाला तो शायद अब पता नहीं कम हो गया होगा, हमने अपने भी तो शगुन कई बनाए हैं, तो ऐसे हो गया इस तरह से हुआ, तो फिर मैंने कहा ये तो सही नहीं है, ये तो एक बदशगुनी हो गई, तो मैं वापिस आ गई, कबीरा गुनाह है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसका अकीदे से ताल्लुक है। तो बदशगुनी की वजह से कामों से रुक जाना ये गलत है, बल्कि उल्टा उस काम को कर लेना चाहिए, काली बिल्ली ने रास्ता काटा मैं और करूंगी कोई बात नहीं। इसका मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मुहर्रम को शादी कर लिया ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये काम खराब हो गया, इसीलिए खराब हुआ ना आपने 10 मुहर्रम को की थी, मुंडेर पे कब्बा बोल लिया, वो फुलाना मेहमान आ जाएगा, जूती पे जूती चढ़ गई, ये हो जाएगा। क्यों हम बदशगुनियां लेके अपना अकीदा खराब कर रहे हैं? देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी ऐसा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुरा शगुन नहीं लिया, ورنہ تو ان کے ہاں تو اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے تھے، کبھی جنگوں میں جانا ہے تو کبھی کچھ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے لو اب تمہارے نحوست کی یہ بات کہہ دی ہے، تم نے ایسا منحوس بات کر دیا ہے، تم نے یہ کہہ دیا اور ایسا ایسا ہو گیا، تو اب چلو ہم جاتے ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شگون ضرور لیا. اس کی ایک مثال ہے، صلح حدیبیہ کے وقت میں سہیل جو تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھا، فرمایا کہ سہیل ہے، اب معاملہ سہل ہو جائے گا. یعنی ان کے نام سے ایک اچھا شگون لیا، تو اچھا آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کا برا لینا کہ اس کی وجہ سے ایسے ہے، اس کی نحوست سے ایسے ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ جی حالت کی باتیں ہیں، اور افسوس سے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کئی مغربی ممالک میں بھی، ویسٹ میں بھی اس طرح کے شگون بدشگونیاں لی جاتی ہیں. اب بعض لوگ اس حدیث کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، نہیں جی حدیث میں ہے کہ جو ہے نحوست جو ہے وہ عورت میں ہے، پڑوسی میں ہے، گھوڑے میں. واقعی یہ حدیث ہے، صحیح ہے یہ حدیث، مگر جب انسان کو یعنی بغیر کسی ٹیچر کے جب کوئی پڑھتا ہے نا، تو یہی معاملہ ہوتا ہے پھر، کہ اپنی طرف سے ہی اس کے مطلب بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو تو صحیح کہ اس کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ منحوس ہے، اور تو عورت کوئی گھر میں لے آئے، تو عورت ہے ہی منحوس، یہ عورت میرے لیے صحیح نہیں رہی، جب سے یہ آئی ہے میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، مجھے یہ نقصان ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، اسے شادی کی، یہ نحوست ہے. یہ چیز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے عورت کے منحوس، بلکہ کیا یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں نا، ان کی برائی انسان کے لیے بڑی بری ثابت ہوتی ہے. کیسے؟ کہ اگر عورت بری مل جائے کسی کو، تو بتائیں کیا ہوتا پھر، اس کی تو زندگی جہنم بن جاتی ہے. اگر گھوڑا برا مل جائے عورت کی، فرمایا اور پڑوسی، ہاں پڑوسی اگر برا مل جائے، اب وہ پتہ کہ اگر کوئی کسی کا نیبر برا ہو، تو اس کے لیے بھی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی. تو تیسرا گھوڑے کی بات فرمائی، اگر گھوڑا برا مل گیا تو ظاہر ہے اس کے اوپر سوار ہو کے سفروں پہ جانا ہے. اگر وہ برا، اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے سفر ہوتے تھے، نہ رستوں کے اندر کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی ایسی آبادیاں آتی تھیں، لمبے لمبے سفر صحراؤں میں بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے. تو اگر وہ بھی خراب ہوا، اگر اس میں برائی ہوئی، تو پھر انسان کی زندگی بھی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کے اندر ہے، بلکہ ان کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ برے ہو جائیں تو زندگی، کئی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اگر وہ اچھے ہوں تو زندگی سنور جاتی ہے. خوشبختی کی علامت فرمایا نیک عورت کسی کو مل جائے تو اس لیے ایسی باتیں کرنا کہ یہ چیزوں کے اندر نحوست ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لوگ اپنی اسی وجہ سے اپنی اولاد کو بعض دفعہ خطرات سے بچانے کے لیے امام ضامن باندھتے، شادی ہونے لگی کسی کی، دولہے کو امام ضامن باندھا جا رہا ہے، رجب کے مہینے میں نقصان سے بچنے کے لیے کنڈے دیے جا رہے ہیں. یہ اتنی زیادہ کامن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں کے اوپر ہاں بھائی اس سے بچنا ہی چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی اس عقیدے کو اپنا لیا کہ ضرور اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ یہ تو نہیں سوچتے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو پھر بھی بچنا بہتر. نہیں، کسی کالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے بیٹے کی جب شادی کی تو عین 10 محرم پہ کی، کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا. تو تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے، یعنی تمہارا اعمال نامہ ہے جو تمہارا شگون ہے. تم اپنی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی شامت آتی ہوتی ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے ہوتے کہ وہ منحوس ہے. بل انتم قومن تفتنون، کہ تم ایک گروہ جو آزمائے جا رہے ہو. یعنی آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ڈال دی جاتی ہے، یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. ये जो इनके साथ था। इसके अलावा भी आजमाइश की किस्में होती हैं, आप किसी के ऊपर कोई ऐसे मुश्किल वक्त देखे तो उसका मतलब यही जरूरी नहीं है कि हाँ भाई देखा इसकी शामत आमाल ही है, ये ऐसे करते थे ना इसलिए ऐसे हुआ, नहीं जरूरी नहीं है। और हमें किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। और भी दो वजूहात होती हैं किसी के ऊपर आजमाइश आने की। दूसरी और दो वजूहात क्या हैं? नंबर टू के इंसान के अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाने के लिए उसके ऊपर कोई आजमाइशें भेजता है ताकि उसके गुनाह माफ कर दे, उसको पाक साफ कर दे, उसको बख्श दे, सुभान अल्लाह। और तीसरी चीज किस वजह से आजमाइश आती है, जो के जैसे अंबिया के ऊपर आई, उनकी तो ये दोनों ही वजूहात नहीं थी जो मैंने आपको बयान की है, लेकिन उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा ही आजमाइशें आई, फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो फौरन लोगों के ढूंढने शुरू हो जाते ना, क्या किया इसने, अच्छा ये करता था ना इसलिए ऐसा हुआ, नहीं जरूरी नहीं है। देखें अंबिया के ऊपर जितने सख्त हालात आए हैं, जितने वो आजमाए गए ना, उतना कोई भी नहीं आजमाया गया। और जितना किसी का दीन भी स्ट्रांग होता है उतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर आजमाइशें भी आती हैं, अल्लाह ताला उनको टेस्ट भी करता है। तो तीसरी चीज किस वजह से किसी के ऊपर आजमाइश आती है, उसके दर्जे बुलंद करना चाहता है अल्लाह ताला। और वो अपने जैसे आम लोग जो होते हैं, आम लोगों की बात हो रही है, वो अपने आमाल से उन दर्जात तक नहीं पहुंच पा रहे होते जो दर्जे अल्लाह ताला उनको देना चाहता है। तो अब वो उनकी नेकियां इतनी नहीं है, वो इतनी नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर आजमाइश डाल देता है जिससे वो सबर करते हैं और वो उन दर्जात को पा लेते हैं जो अल्लाह ने जन्नत में बुलंद दर्जे उनके लिए रखे हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो हमें नहीं पता होता किस वजह से आजमाइश आ रही है और इसमें क्या खैर अल्लाह ताला ने रखी। अगर गुनाह मिट जाते हैं वो भी बहुत बड़ी खैर है ना, उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती। अगर दर्जे बुलंद हो रहे हैं वो भी एक खैर है, और अगर इंसान के अपने गुनाहों की शामत है जो कि देखना चाहिए अपने अंदर, जब अपने ऊपर कोई आजमाइश है, दूसरों के लिए नहीं देखे अपने लिए, अपने ऊपर जब कोई आजमाइश है तो अगर वाकई शामत आमाल है और उसकी वजह से ये आजमाइश आई है तो फिर भी ये खैर है, इसलिए कि इंसान फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने अंदर झांकता है कि देखे मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये मसला आया, अपने आमाल को जांचने का मौका मिलता है। वैसे इंसान अपने ऊपर ज्यादातर नहीं ऐसी अपना एनालिसिस करता, अपने मुहासबा नहीं करता, लेकिन जब ऐसे ही कोई चीज आती है तो जो सलीमुल फितरत लोग होते हैं, इंसान बैठता है सोचता है मैंने किधर किधर गलतियां की, मैंने क्या क्या किया, मुझे कहाँ इसलाह करनी है, कहीं मेरे इस अमल की वजह से तो नहीं मेरे ऊपर ये आजमाइश आई, कहीं ये फलां चीज मैं करती हूँ इसकी वजह से तो नहीं हुआ, अल्लाह ताला मुझे जगाना चाहता है, ये मेरे गुनाहों के अपने नतीजे हैं कि जो ये चीज हुई है मेरे साथ, मैं इस चीज को छोड़ दूं तो उसमें भी खैर हो गई। लेकिन बाज लोग फिर भी ये नहीं सोचते, वो फिर भी आजमाइश आने पर कहते हाय हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि हमारे ऊपर ये आ गई, क्या मैंने ऐसा कर दिया था, यानी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूं, पाकीजा हूं, और ये कोई नऊज़ु बिल्लाह कोई अल्लाह का जुल्म था। अगर वाकई इंसान के अंदर कोई भी चीज, अव्वल तो पहले देखना ही चाहिए और अपने गुनाहों को दूर करने की अपने से कोशिश करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए ये है नहूसत, दूसरों को बजाय मनहूस समझने के ना अपने गुनाहों को मनहूस समझे, हमने ये किया था ना, ये क्यों नहीं कोई समझता कि शादियों पे हमने ये किया था इसकी नहूसत है, यही क्यों समझते हैं कि जी फलाना आ गया था ना वो देखे वो उसकी वो उस औरत की परछाई पड़ गई, वो तो उसका अपना नहीं घर बसा हुआ, बस वो आई थी उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी नहूसत है। हम लोगों को क्यों कहते हैं और वक्त को क्यों कहते हैं, चीजों में क्यों नहूसत ढूंढते हैं, खुद अपने अमाल में नहीं कभी तलाश करते कि मेरे गुनाहों की भी तो कोई नहूसत है या नहीं है। जैसे हर चीज की एक हम अपनी अपने जहन के अंदर एक बनाया हुआ ये चीज की नहूसत, ये चीज की नहूसत, गुनाहों की नहूसत क्यों नहीं कोई समझता कि ये जो हमारे घर में मुसीबत आई है ये हमारे गुनाहों की नहूसत से आई है, हमें गुनाह छोड़ने हैं, पूरी फैमिली बैठ के उसके ऊपर बात करे। तो जब अपने ऊपर कोई आए तो सबसे पहले इस चीज को देखा जाए, फिर उस वक्त ये ना सोच के बैठ जाए हमारे तो बस दर्जे बुलंद हो रहे हैं ना इसलिए, नहीं पहले देखें हमारे गुनाह क्या है, हमारी कहां कहां गलतियां हैं, और उसमें अपना सख्त मुहासबा करें। उसके बाद ये सोचें कि ये चीज मुझे जिंदगी से निकालनी है, ये सारा वजह ये चीज बनी है। जैसे कि इंसान के घर में कई दफा कोई बीमारी हो जाती है तो आप वो करते हैं ना, डिसइंफेक्ट करते हैं हर चीज को, ये भाई जर्म्स यहां से लगे होंगे, ये डोर नॉब से, ये नलकों से, ये फलानी चीज से, तो आप हर चीज को डिसइंफेक्ट करते हैं। आप कहते हैं यहां से जरासीम आए हैं, तो ये गुनाह भी जरासीम है जिनकी वजह से इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, मसले पैदा होते हैं। तो हमेशा याद रखें जब हम मुश्किलात के अंदर पड़े हर वक्त पहले अपना मुहासबा करें, अपने आप को चेक करें मैं कहां रॉन्ग हूं। वकाना फिल मदीना थी तिस आतो रह तिन, थे शहर में 9 ग्रोह या 9 जत्थे ग्रुप, 9 सरदार थे कहते हैं या 9 कबीले थे जो भी था। वो क्या करते थे, युफ्सिदूना फिल अर्ध, वो बड़ा फसाद करते थे जमीन में, वला युसलिहून और नहीं इसलाह करते थे। फसाद सबसे बड़ा कौन सा है, कुफर जो है ना ये फसादी की किस्म है, और ईमान है जो इसलाह है, इससे जमीन में इसलाह होती है। तो उन्होंने ये जो तिस आरहतिन थे उन्होंने बहुत फसाद किया, सरकशी की, ये प्लानिंग की कि सौले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को, वो आपको ऊंटनी का सारा किस्सा पता है, दोबारा नहीं बताने की जरूरत, कि उसकी कूंचे काट देंगे, उसको मार देंगे। यहां से ये पता चलता है कि उनके जो लीडर थे ना उनका हाल क्या था, वो कितने फसादी थे, और जिस जगह पे ऐसे लीडरानों 9 थे उनके, 9 कबीलों के 9 लीडर समझ लें, तो जब किसी सोसाइटी में ऐसे लोग हों टॉप पे तो फिर वहां पे क्या हाल होगा, फिर तो वो कौम बर्बाद ही होगी ना जिन्होंने ऐसे लोगों को अपने सर पे बिठाया होगा। क्योंकि आम आवाम तो बस अंधाधुंध सरदारों के पीछे चलते हैं, बड़ों के पीछे चलते हैं। तो ये 9 आदमी शर की कुंजियां थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग खैर की कुंजियां होते हैं, कुछ शर की कुंजी समझते हैं चाबी, यानी कुछ से खैर ही निकलती है, खैर ही उनसे फैलती है, वो जहां जाते हैं खैर ही फैलाते हैं, और कुछ शर की कुंजियां होते हैं, वो जिधर जाते हैं फसाद, जिधर जाते हैं इधर वो जिसको हम कहते हैं तीली लगा दी, इधर तीली लगा दी, उधर लगा दी, उधर शर फैला दिया, उधर उसको कान में कुछ डाल दिया, उधर उसको उकसा दिया, उसको जरा दे दिए कि एक वो कि तुम ये करो, उकसाना भी तो एक होता ना, इधर इसको उकसा दिया, उधर उसको उकसा दिया, चलो जी फसाद शुरू हो गया। अच्छे भले घर में बैठे हुए लोगों को किसी को ऐसी उकसाना ही मेरे ख्याल वर्ड होगा इसके लिए, कि इस तरह से कर दिया कि वो अब फसाद के लिए तैयार हो गया और खुद चलते बने। तो वो भी लोग थे जो फसाद करने वाले थे, इसलाह नहीं कर रहे थे माशरे में, बल्कि फसाद की चाबियां थे। इसका मतलब है कि सब लोग इक्वल नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर माशरे में जो फसाद चाहते हैं और फसाद फैलाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और हमें खुद को भी देखना है कि हम क्या हैं, मैं खैर की कुंजी हूं या मैं शर की कुंजी हूं, मेरे से दूसरों की जिंदगियों में खैर फैल रही है या शर फैल रहा है, मैं जिधर से निकलती हूं वहां पे पीछे लड़ाइयां छोड़ के आती हूं या सुलह सफाई और मोहब्बत छोड़ के आती हूं। ये तो नहीं मैं किसी के घर से निकलती हूं पीछे उनकी लड़ाइयां शुरू हो जाए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ वहां पे आग लगा आई हूं अपनी जुबान से, अपने किसी काम से। तो ये हमें खैर की कुंजियां बनना है, अल्लाह ताला हमें बना दे, मीठी गोलियां बना दे हमें, हम जहां जाएं हमारी इतनी मिठास हो कि सब जगह को मीठा कर दे, अल्लाह ताला हमारी कड़वाहटें निकाल दे हमारे अंदर से, हम नीम के पत्ते ना बने जो मुंह में डालते ही कड़वाहट महसूस होती है, कड़वे होते हैं। तो कालू, उन्होंने कहा, ये अब किसकी बात हो रही है? ये वही जो 9 लोग थे उनकी बात हो रही है। तकासमू बिल्लाह, कसम खाओ अल्लाह की, लनुबय्यितन्नहु, अलबत्ता हम जरूर रात को हमला करेंगे उस पे। अब ये बैठ के ना प्लॉटिंग हो रही, उनकी प्लॉटिंग की बात बताई जा रही है कि क्या वो उस वक्त मनसूबा बंदी कर रहे थे। और देखिए हैरत की बात ये होगी, आपको लगेगी कि वो किसकी कसम खा रहे हैं, अल्लाह की, और क्या कह रहे हैं, हम हमला करेंगे उस पे। उस पे किस पे? लूत अलैहिस्सलाम पे, अल्लाह और इसके घर वालों पे। यानी प्लानिंग कर रहे हैं कत्ल की और कसम खा रहे हैं अल्लाह की। इसका मतलब है दुनिया में पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं जो अल्लाह की कसमें खा खा के बुराइयां करते थे, कत्ल का मंसूबा बना रहे, वो भी किसके कत्ल का? नबी के और उसके घर वालों के। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिसने बस अल्लाह की कसम खा ली तो अब हम फौरन यकीन कर लें। जिसने अल्लाह की कसम खाई थी तो ठीक ही होगी फिर बात। अल्लाह की कसम खानी हमेशा, कसम तो वैसे ही नहीं कभी झूठी खानी, लेकिन अल्लाह का नाम लेके उसको गवाह बना के जो कसम खाई जाए उसमें कितना मोहतात होना चाहिए। फिर भी उस वक्त भी था और आज तो ये बहुत ही आसान है लोगों के लिए कि अल्लाह की कसमें खा खा के झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं, धोखे देते हैं लोगों को। और जो भोले लोग होते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं उसने अल्लाह की कसम खा ली थी ना। तो खुद भी आंखें खोल के देखना चाहिए कि वाकई ये बात हक भी है या नहीं। और ये नहीं कि उसने कसम खा ली और उसने कह दिया ये चीज सही है या ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं तो वो सही हो जाती है क्योंकि उसने कसम जो खाई। तो इन्होंने आपस में मिलके ये प्रोग्राम बनाया था और मिलके ये कसम खाई थी, एक दूसरे के साथ शरीक हुए थे। शरीक होने से क्या फायदा था इनको कि कोई भी फिर हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब कत्ल का उन्होंने मंसूबा बनाया था तो क्या किया था कि सारे मिल गए थे और उन्होंने कहा था हर कबीले से एक एक बंदा जाएगा ताकि बाद में कोई कुछ कह ही ना सके किसी को। इनके खानदान वाले हमें कुछ भी नहीं कह सकेंगे, दियत पे ही उनको राजी होना पड़ेगा। तो और दूसरी बात यह कि अल्लाह का नाम वो भी जानते थे, उनको भी पता था अल्लाह कौन है, इसलिए वो उस बड़े की कसम खाई लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और अल्लाह ही कहते थे, कोई और नाम नहीं था, अल्लाह ही कहते थे। आज हम सोचते हैं कि जब हम अल्लाह का नाम जानते हैं ना तो बस फिर उसके बाद अल्लाह को खुदा मानने के बाद अब चाहे कोई शिर्क कर रहा है चाहे कुछ है सब ठीक हो गया, सब जायज हो गया। तो अल्लाह को जो मानते हैं तो अल्लाह को मानते ही तो कौम समूद भी थी, लेकिन शिर्क की वजह से उनका ये ईमान काबिले कबूल नहीं था, उनका ईमान ही नहीं था, शिर्क करने वाले थे। तो उन्होंने कसम खाई अल्लाह की कि वो हमला करेंगे और रात को हमला करेंगे। अक्सर जो ऐसे मंसूबे होते हैं वो रात के वक्त किए जाते हैं। आपको पता है रात के वक्त ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा किया था कुफार ने कि हम मतलब सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह ये कत्ल करेंगे। तो ये रात का टाइम होता है ना, ज्यादातर शर की चीजें बाहर निकल आती हैं, इसीलिए रात के अंधेरे अंधेरे के वक्त से पनाह मांगी गई है। सूरह फलक में आता है ना, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती कि रात के वक्त इंसान खाम खा सड़कों पे फिरता रहे, खाम खा जागा रहे और आउटिंग्स पे निकल जाए और रात की एक्टिविटीज रखी जाए और दिन को सोया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। याद रखिएगा कि शर फैलता है रात में। अब देखते हैं इसके अलावा भी चोर डाकू जहरीले जानवर ये सब अंधेरों के वक्त की चीजें हैं। फिर सुम्मा फिर लनकुलन्ना लिवलीहि मा शहिदना महलिकल अहली, फिर हम अलबत्ता जरूर कह देंगे इसके वारसों को या इसके सरपरस्तों को या इसके जो भी जो उनके वो थे कबीले वाले जो थे सालेह अलैहि सलाम के कबीले वाले जो उनके खानदान वाले खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि किसने कत्ल किया। उनके अंदर अभी ये चीज थी पिछले जमानों में कि वो अपने कबीले के बंदे को डिफेंड करते थे, चाहे वो कुछ भी कहता था उसके लिए खड़े हो जाते थे। तो जो ईमान नहीं भी लाए थे वो भी खड़े हो जाएंगे, मगर क्योंकि इनके खानदान से होंगे ना, तो हम फिर उनको कह देंगे। अब ये भी उन्होंने सोच लिया था कि उनको क्या कहना है। अब ये प्लॉटिंग करते हुए सब चीजें देख रहे हैं ना कि उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। मा शाहिदना महली का अहली है, हम तो नहीं मौजूद थे हलाकत के वक्त उसके खानदान की, हमें तो पता भी नहीं, हमें क्या पता। और कौन उसको मार के चला गया, कौन के घर वालों को मार के, हम कहा वहां पे थे, हमको देख रहे थे। वही ना स्वादी कौन, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं, चोरी और सीना जोरी, हम तो सच्चे हैं, हमारे पर खामखा इल्जाम है, हमने क्या किया, हम तो थे भी नहीं वहां पे। यानी आप सारा ये मंसूबा बना रहे हैं बैठ के। लेकिन देखे इंसान मंसूबा बनाता है ना, वह मकर वो मकरन, उन्होंने चाल चली एक चाल, वह मकर ना मकरन, और हमने भी खुफिया तदबीर की एक तदबीर। एक तुम्हारी चालबाजी होती है, एक तुम्हारी तदबीर होती है, और एक अल्लाह की तदबीर होती है, और चलता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। एक ऐसी प्लॉटिंग किसी और ने भी की थी, कुरान में उनका भी जिक्र है, यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने की थी ना प्लॉटिंग उनके कत्ल की। फिर हुआ क्या, उन्होंने एक चाल चली, लेकिन अल्लाह की तदबीर जो थी ना वो ही कामयाब हुई। कोई किसी को मारने का मंसूबा बनाए, कत्ल का बना दे, किसी को नुकसान पहुंचाने का बना ले, कुछ भी नहीं होता जब तक कि अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। लोग मंसूबे बनाते रहते हैं और अल्लाह ताला की अपनी तदबीर होती है जो चल रही होती है। अब वो जब बैठ के ये बातें कर रहे थे, कितनी एक वैसे अजीब सी बात लगती है कि वो कसमें खा खा के ये बात कर रहे हैं अल्लाह की नाम की, और ये नहीं सोच रहे कि वो जिस अल्लाह की कसम खा रहे हैं वो तो इस वक्त हमारी बातें सुन रहा है, वो तो देख रहा है। क्यों ये भूल जाते हैं हम, जिस वक्त हम मुंह से कोई बात निकालते हैं तो हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं अल्लाह की कोई बात कह रहे होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कई लोगों को सुनते हैं, वो कहते हैं जब हम क्यामत में जाएंगे ना हम तो अल्लाह ताला को ये कह देंगे। मैं तो कह दूंगी अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। आप ये बात भूल गए कि अल्लाह तो सुन रहा है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कि मैं तो ये कह दूंगी। आप जो प्लॉटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तदबीरें कर रहे हैं कि मैंने वहां पे जाके क्या कहना है, ये भूल जाते हैं हम कि अल्लाह तो सुन रहा है ना। किसी ने कहा मैं इसीलिए नहीं कुरान की तरफ आती क्योंकि फिर अमल करना पड़ेगा और अमल हमसे होता नहीं है, तो मैं फिर जाके वहां पे कह दूंगी ना अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर तो वो मुझे कुछ कहेगा ही नहीं। अल्लाहु अकबर, और हैरत है कि हमारा ईमान अल्लाह के ऊपर है और फिर भी हम ऐसी बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं हम उसको ये जवाब दे देंगे, जैसे कि हमने वहां जाके, अभी तो उसको नहीं ना पता, तो हमने वहां जाके देखो कैसा उसको ट्रिक कर लेना। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे ये सोच सकते हो, जिसके सामने तुमने कहना वो तो इस वक्त जानता है कि तुम किस नियत के साथ नहीं आ रहे इस कुरान की तरफ, तुम क्या बोल रहे हो इस वक्त, क्या वो नहीं जानता। अल्लाह यालमु मन खलक, अल्लाहु अकबर। तो ये उनका भी हाल था, अल्लाह के नाम की कसमें खाका के कह रहे हैं ये बात, और ये सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे, और जैसे कि अल्लाह को तो पता ही नहीं चला। तो उनकी उनका मकर था और अल्लाह ने मकर किया। ये असल में मकर के लफ्ज के साथ ही अल्लाह ताला ने अपने लिए भी मकर का, कि जैसे उनने एक चीज की प्लानिंग की थी अल्लाह ताला ने भी एक चीज की प्लानिंग की। वहुम ला यशऊरून, और उनको तो शऊर भी नहीं था, उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह भी एक प्लानिंग कर रहा है। ये होती है कि जब अल्लाह की प्लानिंग होना और अल्लाह की प्लानिंग किसी के हक में हो जाए तो फिर तो चाहे दुनिया जोर लगा ले कोई उसको नुकसान नहीं दे सकता, सारी दुनिया मिलके भी नुकसान पहुंचाना चाहे। ये अकीदा भी ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस अकीदे को दिल में जमाने के लिए। इंसान अपने आप को बार बार रिमाइंड कराए कि पूरी दुनिया भी मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, और ये पूरी दुनिया मेरी सेफ्टी के लिए खड़ी हो जाए, मेरी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो जाए, मुझे चारों तरफ से घेरे रखे, मेरे घर पे बॉडीगार्ड्स हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन अगर अल्लाह मुझे नुकसान देना चाहे तो ये सब मिलके भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मुझे मेरी हिफाजत नहीं कर सकते, मुझे शर से नहीं बचा सकते। ये एक तो मोमिन का ईमान है, लेकिन पता नहीं ये क्यों बात हमें हमारे दिल में बैठती ही नहीं है। बोलने के लिए आसान है लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ये बात बड़ी मुश्किल है जहन के अंदर जमना। इसके लिए हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब भी ऐसी कोई बात होगी तो हम यही कहेंगे ताकि हम अपने आप को रिमाइंड करा सकें। अब देख लें उन्होंने इतनी पक्की प्लानिंग की और सारों ने मिलके की ताकि कोई भी किसी के ऊपर इल्जाम ना दे। और क्या सालेह अलैहिस्सलाम की कौन सी कोई फौजें थी खड़ी हुई, कौन से उनके कोई बॉडी गार्ड थे, कौन सी उनकी कोई सिक्योरिटी थी कि जो उन तक रीच करना ही बड़ा मुश्किल होगा। ये तो चुटकी बराबर का काम नहीं था उनके लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें। ज्यादा से ज्यादा क्या आड़ होगी उनका कबीला, तो उसको भी हम कह देंगे हमें क्या पता, हम तो थे ही नहीं और हम बिल्कुल सच्चे। इसके अलावा तो कोई भी रुकावट नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला ने अल्लाह अकबर कैसे फरिश्तों को हिफाजत के लिए बिठा दिया साले अलैहिस्सलाम की। और ये लोग जब निकले हैं साले अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए रात के वक्त, तो एक चिटान लुढ़कती भी आई और इन सब सरदारों के सर फूट गए, सारे एक साथ मर गए। इन्होंने सोचा था ना कि हमने जैसे ऊंटनी को मार दिया तो अब इसी तरह उनका और हौसला बढ़ गया। उन्होंने कहा अब साले सल्लम को अभी हम मार देंगे। तो ऊंटनी जब कत्ल किया था तो उस वक्त कौन सा हमारे पर कोई अजाब टूट गया, तो इनको भी कत्ल कर देते ताकि किस्सा ही खत्म हो ना। और एक जगह ये भी आता है कि वो तो गए और वो तो मर गए, उसके बाद जो दूसरे लोग थे वो उनको ये ही नहीं समझ आ रही थी कि ये हुआ क्या, कैसे ये मर गए, इनके साथ क्या बनी है। ये भी है कि वो जब इस इरादे से जा रहे थे तो फरिश्ते ने पत्थर से इन सब के दिमाग पाश पाश कर दिए, जिन दिमागों से वो ये बैठ के प्लॉटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो इतने अरसे से गए हुए हैं, इतनी मतलब देर हो गई है अभी तक वापस नहीं आए, खबर लेने के लिए चल पड़े, तो उनके भी सबके सर फटे हुए और भेजे निकले हुए देखे कि सारे मुर्दा पड़े हैं। उन्होंने फिर सालेह अलैहिस्सलाम पे कत्ल के इल्जाम लगा दिया कि तुमने इनको कत्ल किया, और उनको मार डालने के लिए निकल पड़े। मैंने पहले तो इनको भेजा था ना, ये तो मरे हुए मिल गए, फिर उसके बाद खुद निकल पड़े। ये तो ऐसी कौम थी जो अपने नबी को मारने के लिए चल पड़ी थी। तो जब खुद मार डालने के लिए निकले तो सालेह अलैहिस्सलाम का जो खानदान कबीला था वो खड़ा हो गया और वो कहने लगे देखो इसने तुमसे कहा ना कि 3 दिन में अजाब आ जाएगा, तुम ये 3 दिन तो गुजरने दो, अगर ये सच्चा है तो इसके कत्ल से अल्लाह को और नाराज ना करो और ज्यादा सख्त अजाब आएगा तुम्हारे पर, और अगर ये झूठा है तो फिर 3 दिन के बाद तुम्हारे हाथ से बच के कहां जाएगा, फिर तुम जो मर्जी कर लेना। चुनाचे वो लोग चले गए, क्योंकि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था ना कि अल्लाह की ऊंटनी को तुमने कत्ल किया, 3 दिन तक बस तुम मजे ले लो, 3 दिन तुम्हारा मोहलत है, इसके बाद अजाब आएगा। तो ये लोग ये सारी बातें सुन के कहने लगे ये तो इतनी मुद्दत कह रहा है, हम तो आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं, इसको बस फारिग करें। अल्लाह अकबर। तो क्या उन्होंने किया कि जिस पत्थर से ऊंटनी निकली थी उसी पहाड़ी पे सालेह अलैहिस्सलाम की एक मस्जिद थी जहां पे वो नमाज पढ़ते थे, तो इन्होंने मशवरा किया कि जब वो नमाज को आए उसी वक्त रास्ते में हम उनका काम तमाम कर दें। जब पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो देखा ऊपर से चट्टान लुढ़कती भी आ रही है, उससे बचने के लिए ये एक गार में चले गए कि हम जाके जल्दी से यहाँ पे पनाह ले लेते हैं, ये पत्थर ऊपर से जैसे होता है ना लैंडस्लाइड होती है तो वो इतना बड़ा पत्थर आ रहा है तो हम तो मर जाएंगे, तो गार में छुप जाओ। अच्छा देखो जरा कि क्या हुआ कि गार में जाके छुपे तो वो चट्टान आके गार के मुंह पे ठहर गई, पता नहीं चलता कि ये अल्लाह की प्लानिंग है, उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया। अब वो लाख कोशिश करें वो नहीं खुला और सब के सब अंदर ही हलाक हो गए, किसी को भी नहीं पता चला कि कहां गए। अल्लाह अकबर। तो इनको यहां पे ये अजाब हुआ, कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे अंदर, ओके खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन ये है अल्लाह की प्लानिंग। जब अल्लाह की प्लानिंग होती है ना, यकीन करें, यानी ये अपनी आंखों देखा, कभी हो सकता है आपने भी देखा, लेकिन कई दफा मेरे तो मुशाहदे में आया कि जब अल्लाह की प्लानिंग होती है लोगों की उल्टी भी सीधी पड़ जाती, और जब अल्लाह ताला खिलाफ होता है तो सीधियां भी करते हैं तो उल्टी पड़ने लगती। फिर इंसान को समझ आ जाता है कि देखो अल्लाह किसके साथ है, और जिसकी अल्लाह मदद करे वो कोई उसके अंदर गुण नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं है, वो उल्टी भी करता तो सीधी चल रही है। फंजुर कैफ काना आकिबतु मकरिहिम, बस देखो किस तरह अंजाम हुआ उनकी चाल का, उन्होंने चाल चली थी, देखा कैसे हुआ। अन्ना दमरनाहुम व कौमहुम अजमाइन, हमने तबाह कर दिया उनकी कौम को, उनको भी और उनकी कौम को भी, सब के सब को, किनको, ये जो सारे तिसातु राह थे उनको भी कर दिया, ये जो निकले थे, और कौम को भी कर दिया। क्या पता चलता है इससे? देखो याद रखें, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब कोई नसीहत करने के लिए आता है ना, अल्लाह की बात की नसीहत करता है, तो वो उसकी बात नहीं होती, वो अल्लाह की बात होती है, लेकिन हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको तो रास्ते से हटाओ, ये रास्ते से हटेगा तो जैसे हमें खुली आजादी मिल जाएगी, फिर हम जो मर्जी करेंगे। ये आगे हमें नसीहतें करता है, रंग में भंग डालता है, हमारे मजे खराब करता है, उसकी नसीहतें ही हर वक्त चलती रहती हैं। तो हम उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं उल्टा, जो अल्लाह की कोई बात बता के नसीहत करना चाहते हैं। तो कभी ऐसे लोगों की मुखालफत ना करें, हो सकता है सुभान अल्लाह अल्लाह की तरफ से वो लोग ही हों जो हमारे लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आए हों कि हम बाज आ जाएं, वो लोग हमारी हिदायत का जरिया बन जाएं। तो उनकी मुखालफत करना अल्लाह की मुखालफत करना है, इसीलिए इंतकाम भी फिर अल्लाह ताला खुद लेता है, इंसानों के हाथों में नहीं कहीं पे भी दिया कि आप फौजें लेके चढ़े, आप ऐसा करें, आप ये नहीं, अल्लाह ताला ने खुद इंतकाम लिया। अल्लाह अकबर। अगर आज के वक्त में भी देखा जाए, अक्सर ये होता है कि कोई अगर हमारे किसी गुनाह की निशानदेही करता है कि ये भी ये आप गलत कर रही हैं, ऐसा ना करें, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना चोर पकड़ा जाता है ना, गिल्ट तो अपने अंदर होती है, और फौरन फिर हम क्या आगे से कहने लगते हैं, ये तो खुद ऐसी है, ये तो ये है, इसका तो हमें पता है, ये तो ये करती थी, ये तो वो करती थी। लेकिन ये पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है, जिस कौम साले ये करती थी, उन्होंने ऐसे किया, हम भी मजे ले लेके पढ़ रहे हैं। जब हमें हमें सोचें कोई कहे कि आप में ये गलत चीज है, ये ना करें, इससे बाज आ जाए, ये अल्लाह की नाराजगी का काम है, तो तब हम कोई सुनते हैं बात? उन्होंने तो प्लॉटिंग की नबी के खिलाफ। अब हमारे यहां क्या होता है कि जो नसीहत की बात कर रहा होता है, चलो कत्ल की तो नहीं, लेकिन जो नसीहत की बात कर रहा होता है उसको कैसे अब हम अपनी मजलिस से हटाएं? आइंदा से हमने इनको बुलाना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं इनको अपनी दावतों में बुलाने की, कोई जरूरत नहीं इनको अपने फंक्शंस पे बुलाने की, ये तो सारा मजा ही खराब करते हैं जी। ये चीज होती है कि जब कोई कुरान और हदीस से या कोई तलकीन करता है तो उसके खिलाफ ऐसे नहीं खड़े हो जाना, बल्कि खुद को सोचें कि मैंने अपनी इसलाह कैसे करूं, उनको हटा देने से रास्ते से, उनको अपनी मजलिसों में ना बुलाने से कोई वो गुनाह खत्म थोड़ी हो जाएगा, गुनाह तो वहीं का वहीं रहेगा, उनसे मिलना जुलना छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा? उल्टा हम कहना शुरू करते हैं, अब छोड़ो, अब तो हम नहीं इस दर्स में जाएंगे, हमने नहीं अब इनकी बात सुना करनी, ये तो खुद ऐसे हैं, ये तो ये हैं, और एक लोगों का जत्था बना के उनके अंदर उसकी मुखालफत शुरू कर देंगे, उसके खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि उसने उस चीज की निशानदेही की जो आप करते थे। मिसाल के तौर पे कोई हराम काम करता है, वो किसी ने उसमें उसको नसीहत कर दी, किसी दर्स में उसके ऊपर बात कर दी, कोई बेपर्त फिरता है, किसी ने उसके ऊपर बात कर दी, तो लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो ये हमें देखना चाहिए हमारा रवैया क्या होता है जब हमें नसीहत की जाती है। आपने इन कौमों के रवैये तो देख लिए है ना, یہ کیا کرتی تھی جب ان کو اللہ کا کوئی نمائندہ جو کہ اس وقت کا نبی ہوتا تھا وہ بتاتا تھا. اب تو کوئی نبوت نہیں ہے, اب تو عام لوگ ہی ہوں گے جو کوئی اللہ کی بات بتائے گا, جو کوئی حق بات سامنے رکھے گا, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم اس کے ساتھ کرتے وہی اگر نبی بھی ہوتے تو ان کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا. اوکے, اصل بات یہ کہ وہ گناہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور نہیں چاہتے کوئی ان کو پن پوائنٹ کرے, بس ہم ایسے ہی کرتے رہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو جب ایسے کوئی کرے تو اس وقت انسان اپنے اندر جھانکے, میرے اندر یہ برائی ہے, اس کے اوپر اللہ سے توبہ کریں, دعا کریں, اللہ مجھے اس سے بچا لے. جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی وہ تو بلکہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے, وہ تو ایسا ہی ہے کہ مسیحا ہے. جیسے ڈاکٹر کوئی بیماری کو ڈائگنوز کر کے بتا دے تو وہ ڈاکٹر کوئی مارنے چل پڑے, اس ڈاکٹر کو راستے سے ہٹاؤ کیونکہ اس نے ہمیں یہ بری بات بتائی ہے, تو اس نے تو بیماری ہی ڈائگنوز کی ہے نا. اسی طرح گناہ بھی بیماریاں ہیں, کوئی کسی کی گناہ کی نشاندہی کر کے اس کو بتایا تو کبھی بھی برا نہ مانے. تو دیکھیں فرمایا فاتل کا بیوتم خاویتن بما ظلموا, یہ ہیں ان کے گھر تباہ شدہ. کس وجہ سے تباہ ہوئے, کس وجہ سے تباہ ہوئے؟ ہمارے تو یہاں پہ اگر کوئی میڈیا والے چلے جاتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ تو تباہ ہو گئی کیونکہ ایسے ہو گیا, وہ یہ زلزلہ ایسے آ گیا, فلاں ایسی چیز ہو گئی. ان کو تو چنگھاڑ کی سے اللہ نے ہلاک کیا تھا اور انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا لینی تھی چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا وجہ بتاتے, کیا وجہ ہے ان کی اس طرح کی ہلاکت کی؟ انہوں نے جو ظلم کیا, سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے نا, اور اس کے بعد کے بھی ان کے جو کرتوت تھے. تو آج دیکھیں ان کی عمارتیں تو کھڑی نہیں ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو, کہ جائیں جا کے وزٹ کریں وہاں پہ, دیکھیں کہ یہ کتنی عالی شان انہوں نے تعمیرات کی ہوئی ہیں, لیکن ان کے بنانے والوں کو تو زندگی کی مہلت بھی نہیں ملی, جینے کی مہلت تک نہیں ملی, وقت سے پہلے ہی وہ چلے گئے. جو ایک مہلت ہوتی ہے نا ایک قوم کی, کہ اس وقت تک وہ ظاہر انہوں نے ہو سکتا تھا, آج تک تو وہ ظاہر قوم نہیں رہتی, ان کی نسلیں نہیں رہتی, لیکن کم از کم ان کے ٹائم میں تو ان کو موقع ملتا جینے کا, ان کو تو ملا ہی نہیں. عمارتیں رہ گئی, مکین چلے گئے. عبرت کی یہ چیزیں ہیں, ان سے سبق لو. یہ قوم ہی یعلمون, وہ لفظیت بھی وہی لیں گے نا جو علم رکھتے ہوں گے, نشانی بھی وہی, عبرت کی مثال اور اس سے سبق وہی لوگ لے سکتے ہیں. لے قوم یعلمون, یعنی ہر ایک نہیں لے سکتا, علم والے. علم کتنی بڑی چیز ہے نا, علم کی وجہ سے انسان کسی واقعے کو دیکھ کر اس میں سے وہ چیز لے سکتا ہے اپنے لیے جو کہ اس کے لیے لیسن ہو. باقی لوگ بھی سنیں گے باتیں, لیکن جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ جائیں گے دیکھیں گے, پکنک منگنائیں گے وہاں پہ اور واپس آ جائیں گے. آپ کے یہاں موہنجو دڑو, ہڑپا وغیرہ, ان کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہی کرتے ہیں, جا کے پکنک ہوتی ہیں, ٹرپ جا رہے ہیں اسکولوں کالجوں کے, وہاں پہ جا کے کھاتے پیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے کبھی گیا بھی ہو, یا آپ نے وہاں پہ کبھی ایسی باتیں سنی؟ یہ کیسی عبرت کی نشانیاں, لوگوں ان سے عبرت لو. لوگوں دیکھو, یہ بھی کوئی لوگ تھے جو اس دنیا میں رہتے تھے اور انہوں نے کتنی ترقیاں کی تھی, لیکن ان کے اعمال وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور ان کے کھنڈرات کو اس لیے کھڑے رکھا, ان کے گھروں ان کی عمارتوں کو اس لیے کھڑا رکھا تاکہ تم دیکھ کے جان لو کہ دیکھو ان کے پاس کتنا مال, دولت, صلاحیتیں, علم, کتنی چیزیں تھیں ان کے پاس. یعنی یہ جو اس کا جو اس کی ٹیکنیکس تھی ان چیزوں کو بنانے کی, وہ سب تھی, اس کا نالج تھا, لیکن کچھ بھی کام نہ آیا. آج کہاں یہ لوگ؟ تو یہ عبرت کی نشانی ہیں, لیکن عبرتیں وہی لیتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو علم لینا چاہیے پھر, جاہل تو پھر کوئی سبق نہیں لیتا. اور یہاں پہ کون سا علم مراد ہے؟ میتھ اور سائنس کا نہیں, قرآن کا علم. रान का इल्म जिसके पास होगा ना, वो फिर इबरत लेगा। आप खुद ही अपने आप को देख लें, जब आपने कुरान नहीं पढ़ा था उस वक्त आपकी नजर में और आज आपकी नजर में कितना फर्क है। आज अगर उन्हीं जगहों पे आप जाएंगे तो कुछ और तरह से देखेंगे। इससे पहले, कुरान को सीखने से पहले, हो सकता है आप कभी गए हों तो तब किस नजर से देखा था। तो कुरान इंसान को वो इल्म देता है कि फिर वो हर चीज से नसीहत लेने लगता है, हर वाक्य से नसीहत लेता है, अपने हालात में रहनुमाई उसको मिलती है। وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, हमने निजात दी उन लोगों को जो ईमान लाए और जो तकवा वाले थे। इसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत होती है, निजात ईमान वालों को ही मिली है, हर वाक्य में आप देख लें। तो अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह की मदद हमें मिले, तो फिर ईमान और तकवा ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मदद होती है। और फिर जो अल्लाह का हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, फिर इसीलिए उनको निजात मिल गई ना।